शांति। आत्मा क्या चीज है, परमात्मा कौन है, वो उसके कर्तव्य क्या है, ये सब राजयोग के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम कहते ज्ञान योग। ज्ञान के आधार से हम ये योग करते हैं, परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, उसको पहचानते हैं। तो ये जो भी बातें यहाँ बताई जाती है, ये सब शिव परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के माध्यम से सुनाई है। कई हमसे पूछते हैं, बहन जी कौन से पुस्तक को आप रेफर करके बताते हो, तो हम कोई पुस्तक को रेफर करके या उसके श्लोक बोल करके आपको नहीं बताते हैं, उस अनुसार नहीं ज्ञान देते। लेकिन जो शिव परमात्मा ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सुनाया है, वो सत्य ज्ञान जो इस समय की आवश्यकता है, वो आपको सुना रहे हैं। क्योंकि अब संसार में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कई कहते हैं कि तो क्या इतने सारे शास्त्र है वो हम पढ़े या न पढ़े। अब वास्तव में परमात्मा इस समय सभी शास्त्रों का सार बता रहे हैं। जैसे सारा साल तो आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं तो फिर से सारे साल की पढ़ाई थोड़ी दोबारा पढ़ते हैं। परीक्षा के नजदीक आने पर क्या पढ़ते हैं, हाँ क्या पढ़ते हैं, जो सार है उसका। क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे बस उसको पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, इसलिए वो सार हमें चाहिए। तो भगवान आकर के हमें सारा सार बताते हैं, अपनी रचना और अपना भेद, रचयिता और रचना का पूरा भेद हमें स्पष्ट करते हैं। इसलिए आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और तीसरा ज्ञान है समय का ज्ञान। विश्व को एक घड़ी भी कहा गया है, तो विश्व घड़ी में अब कितने बजे हैं, जैसे हम सारा दिन घड़ी देखते हैं, तो किस समय कौन सा काम करना जरूरी है ये अगर पता है तो हम समय को सफल करते हैं। तो विश्व की घड़ी में अब कितने बजे हैं और हमें क्या करना है, ये अभी परमात्मा आकर के हमें समझ देते हैं। तो समय का ज्ञान क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे, और कल सवेरे आपको बताया जाएगा कर्म का ज्ञान, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। क्योंकि समय और कर्म का भी आपस में संबंध है, वही कर्म अगर एक समय पर करो तो अच्छा माना जाएगा, पर दूसरे समय पर करो तो बुरा माना जाएगा। दिन के समय खाने का समय है, पर रात के समय कोई खाता रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, हैं बुरी बात है, ये शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। दिन को सोता रहेगा और रात भर जागता रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, हैं गलत है, ये रात को सोना है, दिन में जागना है। तो जैसे विश्व की भी एक घड़ी है, इस घड़ी में अब कितने बजे हैं और इस समय हमको क्या करना है, कहीं हम गफलत में सो तो नहीं रहे हैं, हम अपने आप से पूछें। इसीलिए कहा गया है कि समय, हाँ समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा क्या है जो नहीं मिलता, वो भी हमें देखना होता है। तो समय को भी पहचानना है और भाग्य तो कर्म अनुसार होता है, उसको भी समझना है। तो इसलिए ये सारी बातें जो यहाँ बताई जाती है, ये एक नई, एक रेवल्यूशन है, नई क्रांति है जो शिव परमात्मा ने हमें दी है, अर्थात आत्म जागृति की है। तो तीन चीजें अनादि और अविनाशी है, ये शिव परमात्मा ने हमें स्पष्ट किया है। और ये जब स्पष्ट हो जाता है तो सारा भेद ईश्वर की रचना का हमें समझ में आ जाता है। कई कहते हैं कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, कई प्रश्न करते हैं। हम कहते हैं बनाई नहीं, ये तो बनी बनाई है, बनाई नहीं। ऐसे नहीं कि कभी ऐसा समय था जब इस संसार में कुछ भी नहीं था और एकदम से कुछ बन गया, ऐसी बात भी नहीं है। क्योंकि विज्ञान के पास भी इसका उत्तर नहीं है कि ये दुनिया कैसे बनी। वो समझते एक बहुत काला होल था, छेद था बहुत बड़ा, और अचानक उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट हुआ ये सब ग्रह बन गए, और इसके फिर करोड़ों साल लगे उनको ठंडे होने में, फिर मनुष्य बना, न जाने क्या क्या कहते हैं। वास्तव में अगर करोड़ों साल भी लगे तो करोड़ों साल से पहले भी क्या था, और वो जो विस्फोट हुआ वो कैसे हुआ, किसका हुआ, वो जो चीज थी वो क्या थी, वो कहां से आई। इसीलिए मनुष्यों के मन में बहुत प्रश्न है, परंतु परमात्मा ने अपनी रचना का क्या भेद बताया है कि तीन चीजें अनादि और अविनाशी है, इनको किसी ने भी बनाया नहीं है। वो है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों ही अनादि अविनाशी है। ऐसे नहीं कि आत्मा को कोई परमात्मा ने बनाया, या प्रकृति को बनाया, या परमात्मा को भी किसने बनाया। अगर परमात्मा को भी किसने बनाया तो परमात्मा तो वो हो जाएगा जिसने परमात्मा को बनाया, क्योंकि परमात्मा माना जो ऊंचे से ऊंचा है, जिसका कोई रचयिता नहीं है, वो तो स्वयंभू है। इसलिए शिव को क्या कहते हैं, स्वयंभू, निराकार ज्योति स्वरूप, वो प्रकट हुआ, पैदा हुआ कभी नहीं कहेंगे, प्रकट हुआ। शिव के लिए क्या कहेंगे, प्रकट हुआ, कोई माता पिता नहीं उनके। तो इसीलिए तीन शक्तियां अनादि अविनाशी है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये पंच महाभूत भी अनादि अविनाशी है, ये ग्रह जो कुछ भी है ये अनादि अविनाशी रूप से अपनी गति में चल रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि कभी बनाया, अगर बनाया तो एक दिन सब नष्ट हो जाएगा, तो न नष्ट होगा कभी न बनाया है। लेकिन इसमें खेल दो के बीच में है, एक है आत्मा, दूसरी है प्रकृति। खेल दो के बीच में है, जिसको कहेंगे पुरुष और प्रकृति का खेल है। तीसरा है परम पुरुष, परमात्मा इस खेल में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन कब हस्तक्षेप करते हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपति किसी भी प्रजातंत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कानून जो बनाते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं, प्रजा ने ही उनको चुना है नेताओं को, और वो कानून बनाते हैं और राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ता है। ये प्रजातंत्र के अंदर एक कानून बने हुए हैं। लेकिन राष्ट्रपति का अधिकार कब हो जाता है, किसी राज्य में अराजकता फैल जाती है, इतनी अराजकता कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर क्या करते, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, गवर्नर का रूल, राष्ट्रपति का रूल लग जाता है। वो सरकार जो असेंबली बनी, जो चुन के नेताएं आए, सबको डिसॉल्व कर देते हैं, सारी असेंबली को, क्योंकि अराजकता आ गई। तो परमात्मा का हस्तक्षेप कब होता है, जब दुनिया में ऐसी अराजकता आ जाती है, धर्म ग्लानी आ जाती है, तब परमात्मा का हस्तक्षेप होता है। नहीं तो आत्मा और प्रकृति का खेल इस संसार में चलता है। जब आत्मा प्रधान है प्रकृति पर, तो ये संसार सतयुग है। प्रकृति सेवक के रूप में काम कर रही है तो बहुत सुख देगी। इसलिए बहुत सुंदर कहावतें प्रसिद्ध है इसके लिए। अग्नि के लिए कहते हैं कि अग्नि, फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अग्नि सेवक के रूप में आपका काम करेगी तो खाना भी पकेगा, अग्नि से ही पकता है, पेड़ पौधे उनको भी धूप चाहिए, तेज चाहिए। लेकिन अगर जिस प्रकार अभी हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ती जा रही है, सब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, बहुत गर्मी है, जैसे सूरज आग उगल रहा है, बिल्कुल इतनी गर्मी चारों ओर बढ़ गई है तो असहनीय हो जाती है। तो क्या कहेंगे कि प्रकृति कंट्रोल से बाहर जा रही है? इसलिए जब पुरुष का प्रकृति पर अंकुश है तो ये संसार पूरा स्वर्ग है, सतयुग है। जिस प्रकार ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी पर है तो गाड़ी चलाना तो एक खेल है, बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। रास्ता साफ हो, रास्ता बहुत अच्छा हो, रोड में कोई खड्डे न हो, कोई पत्थर न हो, बिल्कुल साफ हो, ज्यादा ट्रैफिक भी न हो, तो गाड़ी चलाना तो कितना अच्छा लगता है, खेल लगता है। लेकिन अगर ड्राइवर का कंट्रोल छूट जाए, शराब पिया हुआ है या बातें कर रहा है या हाथ का कंट्रोल छूट गया, तो शराब पिया हुआ ड्राइवर क्या करेगा? हाँ, ठोकर मार देगा, उसका नींद आ रही है, कंट्रोल ही नहीं है, तो एक्सीडेंट कर देगा। तो वही गाड़ी चलाना जो एकदम आनंद की स्थिति अनुभव कराता है ड्राइवर को, जब कंट्रोल छूट जाता है या ब्रेक फेल हो जाती है तो कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। तो हम देखें, जब आत्मा का कंट्रोल है शरीर पर, इंद्रियों पर, तो यह संसार सतयुग है। और प्रकृति उस समय सेवक के रूप में, पांचों ही तत्व परोपकारी है, दाता के रूप में देते ही रहते हैं, सुख दे रहे हैं। वास्तव में ये पांचों ही तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी मानव के सुख के लिए है। और ये संसार बड़ा ही सुख रूप है। भगवान ने हम आत्माओं को दुख देने लिए इस दुनिया में नहीं भेजा, सुख देने लिए भेजा। प्रकृति भी आवश्यक है, तभी तो आत्मा कर्म कर सकेगी। प्रकृति चाहिए, ये शरीर चाहिए, तो सुख देने के लिए भगवान ने हम आत्माओं को भेजा। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में हैं, शासक है आत्मा प्रकृति पर, तो ये संसार बड़ा सुख रूप है, वो सतयुग है। लेकिन ऐसा भी समय आता है धीरे धीरे, जो प्रकृति मालिक बन जाती है, जैसे गाड़ी मालिक हो गई, ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया तो जहाँ ले जाएगी गाड़ी वहीं ड्राइवर को जाना पड़ेगा। अब उसको तो अंकुश है ही नहीं, जैसे बेलगाम घोड़ा हो गया तो बैठने वाला वहीं जाएगा जहाँ घोड़ा ले जाएगा, होना चाहिए जहाँ मालिक ले जाए वहाँ घोड़ा जाए। तो जब ऐसी स्थिति आती है, इंद्रियां मालिक हो जाती है, तो अनेक प्रकार की वासनाएं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, छल, कपट, निंदा, चुगली, बेईमानी, ये सब संसार में बढ़ जाता है। और आज का ऐसा समय आ गया है जिसको कहेंगे कि जो आचरण है दुनिया में मनुष्यों का, वो कैसा है? अगर हम कहें कि अत्याचार, दुराचार, ये सब जो भी आचरण, बुरे आचरण, वो संसार में इतने बढ़ गए हैं, सदाचार का नाम निशान खत्म होता जा रहा है। तो दुराचार, अत्याचार आदि जो बढ़ रहे हैं, क्या उसका नतीजा होगा? पाप का घड़ा भर रहा है। अब ये घड़ा भरते भरते आखिर तो फूटेगा कि नहीं फूटेगा? तो कई समझते हैं कि ये संसार सदा ही दुख रूप है, लेकिन शिव परमात्मा ने अपनी रचना का भेद बताया है कि ये संसार दुख रूप नहीं है, लेकिन ये संसार एक चक्र के रूप में है। जैसे 24 घंटा एक दिन में होते हैं, फिर 12 घंटा एक घड़ी में होते हैं, फिर 12 घंटा के बाद फिर घड़ी वही 12 पर आने के बाद फिर एक बजते हैं, फिर वही 12 घंटा फिर सुई घूमती है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट एक घंटे में होते हैं, फिर वही रिपीट होते हैं, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 12 महीने होते हैं एक साल में, 4 ऋतु होते हैं सारे साल में, तो इस हम देखते हैं इस संसार में जो प्रकृति की शक्ति है उसमें एक साइकिल है। सर्दी आती है, फिर बाहरी मौसम आता है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर बरसात आती है, ये एक साइकिल है। और ये साइकिल हर 12 मास में फिर रिपीट होता है। 7 दिन का जीवन है ये माना जाता है, 8वां दिन तो कभी आता ही नहीं है, आता है कभी? 7 दिन का ही जीवन है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर शनिवार के बाद फिर क्या आएगा, फिर रविवार आएगा, वही वापस आएगा। तो क्या कहते हैं, 7 दिन की जिंदगानी है, 8वां दिन कभी आता ही नहीं है। तो देखा जाए जिस प्रकार हम ये साइकिल चक्र हम संसार के हर चीज में देखते हैं, प्रकृति की हर चीज सतो रजो तमो ये 3 स्थितियों से गुजरती है, फिर तमो के बाद फिर सतो स्थिति आती है। बच्चा पैदा हुआ वो सतो स्थिति, फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती रजो स्थिति, बुढ़ापा आता है तमो स्थिति, सब अंग शिथिल हो जाते हैं तो तमो स्थिति आ जाती है। लेकिन फिर आत्मा जो अविनाशी है वो एक चोला छोड़ करके नया चोला लेती है, फिर वही सतो स्थिति। पर वो तमो स्थिति फिर रजो और फिर सतो उस रूप से नहीं होगी, साइकिल राइट साइड से फिरता है, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से इस प्रकार फिरता है, सतो से रजो, रजो से तमो, तमो से फिर सतो सीधा, यानी तमो से फिर रजो, रजो से सतो, परंतु तमो से फिर सीधा सतो। रात होती है तो फिर रात के बाद शाम या दिन सुबह ऐसे नहीं आता है, रात के बाद एकदम से सवेरा आ जाता है, दिन शाम फिर बाद में आएंगे 24 घंटे के बाद। तो ये संसार का भी एक चक्र है, ये समय एक लकीर की तरह नहीं है कि यहाँ से समय शुरू हुआ और यहाँ समय पूरा हो जाएगा, नहीं, लकीर की तरह समय होता तो चलो कभी पहले कुछ भी नहीं था और ये सब शुरू हुआ, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर समय चक्र के अंतर्गत आता है और चक्र की कभी आद अंत नहीं होती। तो समय को एक चक्र का रूप दिया गया है या एक सीढ़ी का रूप दिया गया है। तो जैसे चक्र में 4 भाग बताए गए हैं और उसी का स्वरूप है स्वास्तिका। स्वास्तिका निकालते ना दिवाली के समय, अपना हिसाब किताब का चोपड़ा बनाते हैं तो उसमें स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की निशानी बताते हैं। वास्तव में गणेश की निशानी माना इतना ज्ञान है, ये चक्र का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है जो हम आत्माओं को परमात्मा देते हैं, और उसी ज्ञान का भंडार गणेश को बताया गया है, बहुत बुद्धिमान बताया गया है। तो स्वस्तिका में क्या दिखाते हैं, 4 भाग। इसका बहुत अच्छा यादगार हमें बताया गया जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में चावल पकाते हैं, तो उस चावल को एक मटके में पकाते हैं, बताया गया, हमने देखा तो नहीं है लेकिन ऐसे पकाया बताते हैं, और उसके अंदर एक 4 भाग करते हैं, तो जब वो पककर तैयार हो जाता है तो 4 भाग अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे होता है क्या, ये हमें किसी ने बताया। तो जैसे एक स्वस्तिका को बनाया गया है, स्वस्तिका में 4 भाग समान होते हैं, इसी प्रकार ये संसार के चक्र को एक स्वास्तिका का रूप भी दे सकते हैं, जिसमें 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब कई लोग अलग अलग विचारधारा रखते हैं इन 4 युगों के बारे में, कई समझते ये 4 युग तो है लेकिन समय अलग अलग है, कई मत मतांतर है दुनिया के अंदर। लेकिन शिव परमात्मा ने हम आत्माओं को क्या बताया है वो हम आपको बताना चाहेंगे, फिर आप खुद ही जजमेंट करें, निर्णय करें कि सत्य क्या है। तो समय एक चक्र के रूप में है, पर उस चक्र की भी अवधि है, ऐसे नहीं कि कोई अवधि नहीं है, कोई फिल्म होती है 3 घंटे की फिल्म होती है, या 2 घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है। ऐसे नहीं कि कोई चलती रहती है एक फिल्म, पर वो 3 घंटे की फिल्म दिखाएंगे, फिर एक शो पूरा होगा, फिर दूसरा शो चालू होगा, वही फिल्म फिर दोबारा देखेंगे, वो रील के अंदर समाई हुई है फिल्म, फिर उसको दिखाते हैं। वो पंछी अगर यहाँ से उड़ा तो दूसरी शो में वही पंछी फिर से उड़ेगा, ये हाथ उठाया तो फिर से हाथ उठेगा, दूसरे शो में वही एक्टर होंगे। तो कई बार तो चलो एक्टर बीमार हो जाता है कोई नाटक में, तो दूसरे एक्टर को रख देते हैं वही एक्टिंग करने के लिए, पर फिल्म के अंदर तो वो शूट हो ही चुका है। तो इस संसार को भी क्या कहते हैं, एक नाटक है, इसकी भी अवधि है और हम सब आत्माएं इसके अभिनेता है। इसलिए आपको कल बताया कि हर आत्मा एक बहुत अच्छा कलाकार है, कला है कर्म करने की हरे के अंदर। तो इस ड्रामा में, इस ड्रामा की पहले अवधि कितनी है, इसकी कितनी ड्यूरेशन है, तो शिव परमात्मा ने हमें बताया है कि एक चक्र की जो ड्यूरेशन है, समय है, वो केवल 5000 साल है। बस 5000 साल के बाद ये चक्र हूबहू फिर से वैसे ही फिरता है। अब जब ये बात परमात्मा ने हमें बताई, कई लोगों को भला आश्चर्य होता, ऐसे कैसे होगा। मानो आज जैसे हम बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, आज से 5000 साल पहले भी ऐसे ही बैठे थे, आज से 5000 साल के बाद भी ऐसे ही बैठेंगे। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हुई है, फिर भी होगी, पर एक चक्र में एक घटना फिर दोबारा रिपीट नहीं होती है। जैसे ड्रामा में एक दृश्य एक ड्रामा में एक ही बार आएगा, फिर वही जब रिपीट होगा फिर वो दृश्य दोबारा आएगा, पर उस एक ड्रामा में पहले जब चलता है तो वो दृश्य दोबारा नहीं आएगा। इसी प्रकार इस संसार चक्र में जो दृश्य होते हैं फिर इस चक्र में वापस कभी नहीं आएंगे, सब कुछ अलग, हर घड़ी दृश्य बदल जाता है, हर घड़ी हमें अभी यहाँ हाथ है तो यहाँ हाथ होगा, यहाँ हाथ होगा तो बदल गया। क्षण क्षण परिवर्तन इस संसार में होता ही रहता है, लेकिन जब चक्र का अंत आता है फिर वापस उसको आदि में जाना है। अब ये संसार का चक्र कैसे फिरता है, शिव परमात्मा ने इसका बहुत सुंदर राज हमें बताया है। ये खेल है सुख और दुख का, जीत और हार का, स्मृति और विस्मृति का, दिन और रात का, नर्क का, स्वर्ग का। कई समझते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर है, किसी दूसरे लोक में है स्वर्ग, और नर्क कहीं नीचे है। स्वर्गीय स्वर्ग, 7 स्वर्ग है, 7 नर्क है, इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन शिव परमात्मा ने कहा नहीं, स्वर्ग और नर्क इसी सृष्टि पर है, और जो चेतनता है वो भी इसी पृथ्वी पर है, ये भी शिव परमात्मा ने राज बताया। कई वैज्ञानिक सोचते दूसरे ग्रहों पर चेतनता होगी, जीवन होगा, तो कई खोज कर रहे हैं वहाँ मंगल ग्रह जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे कि वहाँ कुछ लाइफ हो, जीवन हो, लेकिन फिर भी वापस ही आते निराश होकर, वहाँ कोई जीवन ही नहीं है। तो शिव परमात्मा ने कहा ये तो विज्ञान का घमंड है, जो घमंड दिखा रहे हैं, सोचते हैं हम दूसरे ग्रहों में जाकर के प्लॉट खरीदेंगे या चंद्रलोक में, चंद्रमा में जाके ये कुछ करेंगे, ये विज्ञान अपना घमंड दिखा रहा है, धन को व्यर्थ गंवा रहा है, क्योंकि शिव परमात्मा अपनी रचना को तो जानता है। तो न कोई ऊपर स्वर्ग है या नीचे कोई नर्क है, लेकिन ये जो 4 युग है वो आधे आधे में बांटे गए हैं। तो जो राइट साइड है वो स्वर्ग है, या ऊपर का जो हिस्सा है वो स्वर्ग है, और जो लेफ्ट साइड है वो नर्क है, अथवा जो नीचे का हिस्सा है वो नर्क है, पर वही नर्क फिर से स्वर्ग बनेगा। अब उसको हमें अच्छी तरह से समझना है। तो 4 युग तो हम सब जानते हैं, और अभी किसी से पूछो कौन सा युग चल रहा है तो क्या उत्तर देंगे, कौन सा युग चल रहा है, सब कहेंगे कलयुग चल रहा है, इतना दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, बाकी सब आचार है सिवाय सदाचार के, बाकी सब आचार है, आचरण है, आचार नहीं आचार, आचरण तो सब है बिना सदाचार के। तो इस कहते क्या करे बहन जी, कलयुग है ना, कलयुग क्या करे, क्या करे करके सिर पर और छाती को मारते हैं, क्या करें क्या करें, बेबस हो जाते हैं। तो ये तो समय का प्रभाव है, हम मानते हैं, लेकिन जिसने अपने आप को पहचान लिया अभी कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परम धाम का निवासी हूँ, मैं शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ, ये समझ लेने के बाद हमें जागृति आती है। जो कलयुग के अंदर अपने आप को समझते हैं, मानो वो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान की नींद में जैसे कुंभकर्ण के लिए दिखाते ना, वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, इनको एक श्राप मिला हुआ था तो सोता था। अभी कुंभकर्ण का भी मतलब क्या है, कोई ऐसे थोड़ी 6 महीने कोई सोएगा, 6 महीने कोई जागा रहेगा। तो ये अज्ञान की नींद में हम आधा कल्प सोते हैं, क्योंकि खुद से भी दूर, ईश्वर से भी दूर, सत्यता से भी दूर, और माया के चकाचौंध में हम अपने आप को समझते हैं कि यही सत्य है। तो जिन्होंने सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा और प्रकृति का जो सत्य स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप, उसको समझा, तो उनके लिए अभी कलयुग नहीं है। अभी हम ये एक निश्चय से कहते हैं कि अब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का चरण है, ये संगम का युग है, संगम है। जैसे अलाहाबाद में नदियों का संगम है, कलकत्ता में नदी और सागर का संगम है, उसको डायमंड हार्बर कहते हैं, गंगा सागर कहते हैं ना, तो नदी और सागर का संगम, लोग उसमें स्नान करते हैं। नीचे आप जाइए कन्याकुमारी, वहाँ सागरों का संगम है, उसका बड़ा महत्व होता है, लोग उसमें स्नान करते हैं। या कई बार 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है, वो अधिक महीना, अभी भी अधिक मास जैसे चल रहा था, बहुत दान पुण्य करते हैं, और कैलेंडर के अंतर्गत भी 28 दिन होते हैं फरवरी में, लेकिन हर चौथे साल 29 दिन होते हैं फरवरी में, इसको लीप ईयर कहते हैं, एक अधिक दिन साल में 365 की बजाय 366, वो अधिक दिन हो जाता है। तो इसी प्रकार 4 युग तो मशहूर है, लेकिन शिव परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो यह संसार उन बच्चों के लिए बदल जाता है जो परमात्मा को पहचानते हैं, और उसको कहते अधिक युग, यानी पुरुषोत्तम संगम युग। तो अभी जो समय चल रहा है ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का, बीच का संगम। वैसे परमात्मा कहते मैं संगम पर आता हूँ, लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया कि युगे युगे माना हर युग में आता है। अब हर युग में परमात्मा को आने की जरूरत नहीं है, सतयुग में आकर के क्या करेगा, त्रेता में आके क्या करेगा, द्वापर के बाद तो कलयुग आना है, तो कलयुग थोड़ी लाएगा परमात्मा, परमात्मा को तो कलयुग के अंत में आना है, यानी कलयुग अंत और सतयुग के आदि के संगम पर परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। जब संसार में चारों ओर धर्म ग्लानी होती है, तो अभी का जो समय है ये धर्म ग्लानी का समय है। एक महाभारत में धर्म ग्लानी के वर्णन बताते हैं, परंतु एक कंस नहीं था, एक रावण नहीं था, एक दुशासन नहीं था, एक दुर्योधन नहीं था। आज दुनिया में तो अनेक कंस जैसे हो गए हैं, अनेक दुर्योधन, अनेक दुशासन, अनेक रावण जैसे। एक रावण की बात नहीं है, एक कंस की बात नहीं है। तो देखा जाए कि ये कलयुग के अंत के समय परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, और हम आपको वो खुशखबरी बताना चाहते हैं कि आज से 71 वर्ष पूर्व परमात्मा ने अपना दिव्य कर्तव्य सृष्टि के परिवर्तन का आरंभ कर दिया है, और कैसे गुप्त रूप से नई सत्ययुगी सृष्टि की रचना हो रही है। जैसे ये संसार एक वृक्ष के समान है, नए वृक्ष का कलम लगाते हैं, मानो सत्ययुगी दुनिया का कलम लग रहा है पवित्रता और योग के बल से। तो कैसे ये चक्र फिरता है, ये संसार सत्ययुग में बड़ा ही सुख रूप है, मानव देवता के समान है, नर नारायण स्वरूप है, नारी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो देवताएं कोई हमारे से अलग नहीं थे, भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है, तो 33 करोड़ देवी देवताएं कब थे, भारत की ही ये जनसंख्या थी, भारत में ही वो वास करते थे। भारत की जब हम परिभाषा बताते हैं, उसका अर्थ बताते हैं तो बड़ा सुंदर है। भारत का अर्थ ये नहीं है कि कोई भरत राजा नाम से था जिसके नाम से भारत पड़ा, या सिंधु नदी बहती थी तो सिंधु के नाम से हिंदू पड़ा और हिंदुस्तान पड़ा, ये कई कहते हैं। लेकिन भारत शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है। भारत अर्थात भा और रत, भा माना प्रकाश और रत माना समाया हुआ। भारत यानी वो स्थान जहां हर एक के अंदर प्रकाश समाया हुआ था, ये भारत की शक्ति है। अर्थात पवित्रता का ताज हर एक के सिर पर था। कई नेपाल वाले यहाँ बैठे हैं, कहते बहन जी भारत की महिमा कर रही है, नेपाल की महिमा क्यों नहीं कर रही है। आप नेपाल को अलग मत समझें, ये वास्तव में एक अखंड भारत के रूप में था उस सत्ययुगी दुनिया में, लेकिन धीरे धीरे ये कैसे खंडित होता गया और अनेक आज देश पनप गए, राज्य पनप गए, जो हम देख रहे हैं टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन असली भारत जहाँ देवी देवताओं का वास था वो सत्ययुगी दुनिया थी, जहाँ हर एक के सिर पर पवित्रता का ताज था और राजाई थी इस भारत भूमि में। नेपाल में तो अभी तक भी राजाई थी, भले अभी नाम का राजा है तो भी राजा तो है। अभी तो भारत की स्थिति ये हो गई है कि राजाई का तो नाम ही खत्म हो गया है, जो नाम के थे वो भी सब खत्म हो गया। तो एक नेपाल के लिए कहते थे चलो हिंदू राष्ट्र है और राजाई है, अब तो वहां भी खत्म हो गई। तो पर सत्ययुगी दुनिया में सारे भारत पर राजा का राज्य, और वो भी कौन राजा, विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिनका हम पूजन करते हैं, वो हमारे ही पूर्वज थे जिनको हम अपना पूज्य मानते हैं। तो ये भारत की संस्कृति थी, भारत इतना ऊंचा था, सारे विश्व पर उसका राज्य था, इसलिए भारत की तो बहुत महिमा है। हम गीत भी सुनते हैं, भारत सोने की चिड़िया थी, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, है ना, गाते ना। तो भारत सोने की चिड़िया थी, दूध घी की नदियां बहती थी, वो भारत देश था। वो कब का समय था, आज से 5000 साल पहले। भारत की संस्कृति इतनी ऊंची थी जो मानव देवता के समान था। देवता का अर्थ क्या होता है, देने वाला, देवता। देवता और असुर में क्या अंतर है, देवता कहेगा मेरा भी तेरा, सब देवता यही कहे मेरा भी तेरा, तो कितना सुख शांति समाज में हो जाए। लेकिन असुर क्या कहेगा, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, ये असुर की वृत्ति है, मेरा तो मेरा, मैं अपना तो नहीं दूंगा पर तेरा भी ले लूंगा। तो ईर्ष्या करके, नफरत करके, दुश्मनी करके, मार करके, हत्या करके दूसरे की वस्तु को जब्त करना, ये आसुरी लक्षण है। तो कलयुग में तो वही देख रहे हैं, पर सत्ययुग की दुनिया में प्रकृति को भी देवता का रूप माना जाता था, ये भारत की संस्कृति है ना। हर तत्व को भी देवता मानते हैं, अग्नि देवता, वायु देवता है ना, पृथ्वी को भी देवता, धरती माँ कहकर के हम याद करते हैं। किसी अन्य संस्कृति में धरती को माँ कभी नहीं कहा है, धरती माता कहते हैं। तो इसीलिए सूर्य को भी देवता कहेंगे, हर तत्व को देवता कहते, पेड़ को भी देवता का रूप में उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि प्राणी मात्र को भी देवताओं का जो वाहन बताते उनकी भी पूजा होती है। विष्णु की पूजा होगी तो गरुड़ की भी पूजा होगी, साथ में होगी ना, शिव की पूजा होगी तो नंदी की भी पूजा होगी, उसका जो रथ है उसकी भी पूजा होगी, लक्ष्मी की पूजा होगी तो उनका कमल आसन तो कमल की भी पूजा होगी, सरस्वती की पूजा होगी तो जिस मोर पर सवार है उसकी भी पूजा होगी, हंस पर सवार है उनकी पूजा होगी। मानो देवता की पूजा तो उनके जो वाहन है उनकी भी पूजा, मानो पशु पक्षी की भी पूजा। इतना सत्कार हरेक को मिलता था तो मनुष्यों को कितना मिलेगा, मिलता होगा, सोचने की बात है। वहां पर मनुष्य की काया कंचन काया थी, कंचन काया माना निरोगी काया थी। देवताओं को कभी रोग नहीं होता है, कलयुग की दुनिया में तो देखो रोग ही रोग है, जन्म से रोगी होते हैं कई, परंतु सत्युगी देवताएं को अमर कहते हैं। अमर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि कोई देह नहीं त्यागा होगा, परंतु अमर का मतलब है कि मृत्यु भी उनके कंट्रोल में थी और बहुत लंबी आयु जीते थे, दीर्घ आयु, 150 साल की आयु थी। आजकल तो अकाल मृत्यु होता है, पिता बैठे बच्चा चला जाता है, कितनी दुख की बात है, कब कोई जाएगा पता नहीं, सवेरे घर से निकलता रात को वापस आएगा ये पता नहीं, अकाले मृत्यु है। घर बैठे 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 हार्ट फेल हो गया, पता ही नहीं चलता है, मौत इतना सस्ता हो गया है। लेकिन सतयुगी दुनिया में देवताएं अमर कहलाते, अर्थात मृत्यु भी उनके कंट्रोल में थी। हर आत्मा को ये ज्ञान था कि जब शरीर बूढ़ा हो जाए, 150 साल की आयु होती, तो वो अपनी स्व इच्छा से आत्मा शरीर छोड़ती, जिस प्रकार सांप अपनी चमड़ी उतार देता है और नई चमड़ी उसको मिल जाती है तो वो मृत्यु थोड़ी होता है कहा जाता है। तो ये शरीर भी एक वस्त्र के समान है, आत्मा अपनी स्वेच्छा से देह त्यागती है जब बुढ़ापा आता और नया चोला उनको मिल जाता है, ये मृत्यु पर भी विजय है। आज भी कई देखेंगे ऐसे योगी हैं, पहुंचे हुए लोग हैं जो पहले से ही अपना समय बता देते हैं कि हम इस स्थान पर इस वेला में इस समय ऐसे अपना देह त्यागेंगे, पहले से ही बता देते हैं, यानी मृत्यु को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और सचमुच उसी समय पर वो सबसे जैसे छुट्टी लेते लेते आत्मा उड़ जाती है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही किया, वो चिन्ह संकल्प किया, दादी को बुलाया, वो सामने आई और दृष्टि और हाथ से जैसे बताए ना, वो शक्ति हैंडओवर कर दी और आत्मा उड़ गई। बोलने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि ब्रह्मा बाबा को पता था मैं संपूर्ण बन रहा हूँ, उनको अपना फरिश्ता रूप दिखाई देता था। तो सतयुगी दुनिया में भी हर आत्मा मृत्यु पर इस प्रकार विजय प्राप्त करती, इतनी दीर्घ आयु उनको मिलती, शरीर तो पुराना होगा ही। और उस समय को कहते हैं जीवन मुक्ति की अवस्था, जीवन में रहते भी मुक्ति है। कई लोग समझते हैं ये दुनिया में दुख है, क्यों दुख समझते हैं, क्योंकि जन्म मरण दुखदाई समझते हैं, जन्म भी दुखदाई, मृत्यु भी दुखदाई, जीवन भी दुखदाई। बच्चा गर्भ में होता है तो भी कितना कष्ट भोगता है, गरुड़ पुराण में आता है कि वो आत्मा है ना, बच्चा गर्भ में होता है तो उल्टा होता है, सिर नीचे की तरफ होता है और पैर ऐसे जैसे उसमें समाये हुए, तो सिर नीचे होता है और हाथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो आत्मा परमात्मा को पुकारती है, हे भगवान मुझे इस गर्भ जेल से निकालो, गर्भ तो इतना छोटा होगा, अब बच्चा तो बड़ा होता जा रहा, आजकल तो पता नहीं रोज अखबारों में तो तीन तीन बच्चे, चार चार बच्चे, पांच पांच बच्चे, पता नहीं कैसे छोटे से गर्भ में समाते होंगे, चूहे जैसे तो पैदा होते होंगे हैं। लेकिन सतयुगी दुनिया में तो इस प्रकार से नहीं होता है। तो वो गरुड़ पुराण में बताते हैं कि वह आत्मा परमात्मा को पुकारती है, प्रभु मुझे गर्भ जेल से निकालो और जब मैं बाहर आऊंगा तो कोई पाप नहीं करूंगा, भगवान कोई पाप नहीं करूंगा, जेल से निकालो। जैसे कोई जेल में होता ना, वो कहता है बस मुझे छुड़ाओ, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। तो उनको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फिर जाके चोरी करता है। तो गर्भ जेल में जब आत्मा है तो भगवान को पुकारती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो पहला शब्द मुख से क्या निकलता है, वाह, रोता है ना। सतयुग में कोई रोता नहीं है, वहां तो जन्म से ही मुस्कुराते हैं, पर यहाँ अगर नहीं रोता है तो जबरदस्ती भी रुलाते हैं। वो माँ या वो नर्स होती है उसको मारेगी ताकि मुंह खोले, वहां। तो हम कहते हैं वहां माना जो गर्भ में वायदा किया ना वो वहां, और अब मैं बाहर आया हूं तो यहां। तो इसीलिए वहां और यहां माना वो वायदे सब भूल गया, अब मैं दुनिया में आया हूं तो खूब पाप करूंगा, वो तो जेल में था तो इसीलिए पुकारा, अब मुझे कौन रोकेगा, मैं तो स्वतंत्र हूं, जो जितना पाप करना चाहूं वो करूं, कौन रोक सकता है। तो ये कलयुग की दुनिया है, इसलिए देखो आयु भी कितनी छोटी है, बार बार ये एक गर्भ जेल, दूसरा वो जेल, वो भी तो जेल है। इतने जेल भरे पड़े हैं जो सरकार को ही चिंता हो गई है कि इतने जेल कहाँ से लाएं, इतनों को कैसे रखें, ये चिंता हो गई है, इतने जेल भर गए। तो ये जेल दुनिया जैसे जेल खाना हो गई है, क्योंकि कर्मों के भी कई ऐसे हिसाब किताब है जिसके कारण संसार जेल जैसा हो गया है। लेकिन सतयुगी दुनिया में जन्म भी सुखदायी, और कैसे गर्भ में भी सुख है, उसका छोटा सा उदाहरण है कृष्ण का चित्र। श्री कृष्ण को जब दिखाते हैं, बाल कृष्ण उसको एक पीपल के पत्ते पर दिखाते, देखा ये चित्र, पीपल के पत्ते पर पैर का अंगूठा चूस रहा है और आराम से सागर पर लेटा हुआ है, देखा है वो चित्र, देखा होगा, पीपल के पत्ते पर सागर के ऊपर पैर का अंगूठा चूसता हुआ, सिर पर ताज और मुरली भी साथ में, यानी गर्भ की वो निशानी है कि गर्भ महल की तरह है सतयुगी दुनिया में। ऐसे नहीं कि कोई सागर से श्री कृष्ण कोई ऐसे पैदा हो जाएगा, लेकिन ये संसार जो एक वृक्ष के समान भी है उसका पहला पत्ता श्री कृष्ण है, बीज परमात्मा शिव है, वो तो रचयिता है, लेकिन श्री कृष्ण उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना है। वो सतयुगी दुनिया का प्रथम महाराज कुमार है। तो राधे और कृष्ण जिनकी पूजा होती है, वास्तव में वही बड़ा रूप जब होते हैं तो लक्ष्मी और नारायण कहलाते हैं। इसलिए आप देखेंगे लक्ष्मी और नारायण का बचपन का कोई कहानी नहीं है, और राधे कृष्ण का भले बड़प्पन का उस रूप दिखाते हैं, लेकिन बड़े चित्र कभी नहीं ज्यादा दिखाएंगे, बचपन ही दिखाते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में वही श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनता है, ये परमात्मा ने एक नया राज हमें बताया है। तो सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी और नारायण का राज्य है सारे विश्व पर, और भारत राजधानी है सारे विश्व की। उस समय धन धान्य से संपन्न वो दुनिया थी, चारों प्रकार का उसको सबको सुख था, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख, ये चार प्रकार का सुख माना गया है। तन निरोगी काया है तो ये भी एक सुख है, फिर मन में भी शांति है ये भी एक सुख है, धन की भी कोई कमी नहीं है ये भी एक सुख है, और समाज भी इतना सम्मान देता है ये भी एक सुख है, परिवार भी सुख रूप है। ये सतयुगी दुनिया थी, इसलिए आज भी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, जो भारत की संस्कृति है, जिनके हम सब वंशज हैं, उनकी मूर्तियों को भी चारों प्रकार का सुख उपलब्ध है। कैसे? कोई भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। होती है खंडित मूर्ति, कभी लक्ष्मी क्या चित्र बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, या दुर्गा अम्बा माँ का दुर्गा का की मूर्ति बनाएंगे मान लो पूजा के लिए, तो एक आंख टेढ़ी हो एक हाथ कटा हुआ हो, ऐसी पूजा होती है क्या? क्या करेंगे ना? उसको निकाल देंगे, वो म्यूजियम में रखेंगे लेकिन मंदिर में नहीं रखेंगे, पूजा नहीं करेंगे। पूजा कौन सी मूर्ति की होती है? अखंड मूर्ति की। और कलयुगी दुनिया में देखो सारे अंग खंडित है, ये चश्मा आंखों पर है तो ये भी तो खंडित हो गई ना आंखें, दांत नकली अगर किसी का है तो भी खंडित हो गई। आजकल तो सब कुछ खंडित है, हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो बाईपास सर्जरी करते रहते हैं, कितनी बार सर्जरी होती रहती है, वो न जाने क्या क्या करते रहते हैं, दूसरा हार्ट भी डाल देते हैं, एक निकालते हैं प्लास्टिक का डालते हैं, अंग बदलते रहते हैं, सब कुछ जैसे खंडित। वहां एक बार चुटकुला पड़ा किसी अखबार में कि एक व्यक्ति को बार बार हार्ट में वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता था तो उसका बाईपास सर्जरी करना पड़ता था। तो ऐसी बाईपास सर्जरी के लिए तो बहुत तकलीफ तो होती है, तो क्या किया डॉक्टर ने, एक बार चीर करके यहाँ पर वो होता है ना क्या, जिप लगा देते हैं, तो जिप लगा दिया, जब चाहे खोलो और हार्ट की सर्जरी करो। हा? ऐसे कि कपड़े को सिलाई करते हैं ऐसे कलयुग की दुनिया में, तो इस प्रकार है। लेकिन खंडित तो हो ही गया शरीर, तो सतयुगी दुनिया में तन भी इतना निरोगी, कोई रोग का नाम निशान नहीं, मन की इतनी शांति, इसलिए जो देवताओं की देवियों का चित्र दिखाते हैं कितनी शांति उनके चेहरे पर है। वो सिर से जुड़ी हुई थी, सिर से, अब दोनों बहनें सिर से जुड़ी हुई तो जहाँ एक जाएगी दूसरे को भी जाना पड़े, वो नहीं जाना चाहे तो भी जबरदस्ती जाना पड़े, तो लड़ती रहती थी आपस में, सिर जुड़े हुए थे। लेकिन जब उन्होंने कहा भाई इस सिर को निकालो, हम अलग होना चाहते हैं, तो जब निकाला तो बेचारे दोनों ही मर गए, क्योंकि वो एक ही वो नस थी खून की, तो डॉक्टर तो बचा नहीं सके, पर परेशान हो गए। 28 साल तक तो एक दो सिर एक साथ जुड़े हुए ही घूमे फिरे, अखबार में आए तो ईरान में कहीं थे। तो देखा जाए 10 सिर होंगे तो कैसे चलेगा, पर वास्तव में रावण का मतलब क्या है? रावण माना ये विकारों का प्रतीक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार नर में, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार नारी में। 10 सिर रावण माना नर नारी जो विकारी है उनका वो प्रतीक है। और उसकी भेंट में विष्णु 4 भुजाधारी, ये पवित्र नर नारी यानी लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक है, 2 भुजा लक्ष्मी की 2 भुजा नारायण की। तो जब नारायण सामने है तो विष्णु है, और लक्ष्मी सामने है तो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी को भी 4 भुजा दिखाते हैं और विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं। वास्तव में लक्ष्मी और नारायण का इकट्ठा रूप है, लक्ष्मी आगे तो महालक्ष्मी और नारायण आगे तो विष्णु। तो ये 4 भुजा माना शक्ति का प्रतीक, शक्तियों को भी 8 भुजा दिखाते हैं, तो ये अष्ट भुजा कोई किसी की निकल थोड़ी आती है, ये शक्तियों का प्रतीक है, जितने भुजाएं दिखाएंगे उतनी उनकी शक्ति। और ये सिर जितना दिखाएंगे, ये सिर माना अहंकार का प्रतीक, ये अहंकार का प्रतीक है, जितना मनुष्य अभिमानी होता है तो सिर ऊपर करता है, जितना नम्र होता है तो सिर नीचे करता है। तो भगवान ने कहा कि ये अभिमान का त्याग करो, रावण हम सब बन गए हैं क्योंकि अभिमान के सिर बढ़ाते रहते, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, तो भगवान ने कहा अभिमान को त्यागो, इसकी बलि चढ़ाओ। अब ये बलि नहीं समझा तो क्या करते हैं कलयुगी दुनिया में, वो बेचारे बकरे की बलि चढ़ाते, बकरा भैंसा, मैंने तो काठमांडू में देखा अष्टमी के दिन देवी के आगे बकरों की बलि और भैंसों की बलि, सारे सिर कटे हुए धर पड़े हैं, खून खून खून, और वो देवी पर चढ़ाते हैं। हमें लगता है कि क्या भगवान ने ऐसा थोड़ी सिर मांगा होगा। हम तो उड़ीसा में भी गए, आसाम में भी गए, बलि बहुत चढ़ाते हैं, तो हमने देखा क्या भगवान ने ऐसे मांगा होगा कि ऐसा सिर काट करके दो। भगवान ने कहा मैं की बलि दो, तो मैं कौन सा बेचारा जानवर बकरा जिसकी भाषा है नै 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 नै, हाँ उसका गला काट लेते हैं। तो ये गले की भाषा नहीं या बलि नहीं, परंतु अभिमान की बलि दो। तो अभिमान की बलि तो देना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बेचारे निर्दोष जानवर के सिर काट करके देवी के आगे रखते हैं, ऐसे थोड़ी भगवान ने मांगा। और उसमें भी आप देखेंगे विचित्र बात ये है, नर बलि नारी के आगे, देवी के आगे, काली के आगे या मानो बलि चढ़ाते हैं, तो नर बलि कभी भी स्त्री जानवर की बलि नहीं होती है। कभी बकरी या भैंस या मुर्गी उसकी बलि नहीं होती है। किसकी बलि होती है? बकरा, भैंसा, मुर्गा, है ना, नर बलि। तो नर बलि नारी के आगे, अब इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि जब संसार में बहुत असुर बढ़ गए तो शिव ने शक्ति को प्रकट किया असुरों का नाश करने के लिए, और शक्ति ने क्या किया, सबकी मुंडियां उड़ा दी। अब बताओ कोई ऐसे मुंडियां थोड़ी उड़ाई होगी, काली के लिए तो क्या बताते हैं, मुंडियों की माला पहनी। वास्तव में काली माना ऐसा महाकाल के रूप में आई काली देवी, जो सबको विकारों से मुक्त किया, वो विकारों से जो मुक्ति दिलाई, तो क्या दिखाएंगे, मुंडियों की माला। मुंडियां थोड़ी पहनेगी काली इस प्रकार से, देवी थोड़ी ऐसी हिंसा करेगी, पर ये प्रतीक रूप में है। तो रावण भी प्रतीक है विकारों का। कई समझते हैं ये विकार तो शुरू से ही है, भगवान कहते नहीं, ये विकार शुरू से नहीं है। जैसे कोई मकान मालिक अपने लिए मकान बनाएगा या अपने बच्चों के लिए बनाएगा तो कमजोर मकान थोड़ी बनाएगा, मजबूत बनाएगा। लेकिन चाहे कितना भी मजबूत हो, थोड़े समय के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, वो मकान धीरे धीरे जीर्ण होता जाएगा, टूटता जाएगा, क्योंकि प्रकृति में सतो रजो तमो स्थिति तो आती जाती है। तो ये संसार का भी ऐसा ही चक्र है, जो धीरे धीरे सतो से रजो स्थिति आती है। और रजो स्थिति माना द्वापुर, जैसे दो पुर हुए तो ताली बजती है तो आवाज होता है। सत्युग त्रेता में एक ही धर्म था, वो अद्वैत राज्य अद्वैत धर्म था, एक भाषा एक ही सब कुछ था, इसलिए झगड़े की कोई बात ही नहीं थी। पर जैसे द्वापुर शुरू हुआ तो दो पुर हो गए, आत्मा खुद को भूल गई और अपने आप को शरीर समझने लगी, तो शरीर समझने से विकारों की प्रवेशता हो गई। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वापर युग से आए, सतयुग से नहीं थे। इसलिए इसी का इतिहास या कहानी के रूप में सभी धर्मों में है। रामायण में तो क्या दिखाते कि राम और सीता के लिए बताते हैं कि लक्ष्मण ने रेखा निकाली कि तुमको इस रेखा के बाहर नहीं जाना है, अगर इस रेखा के अंदर रहोगी तो बचकर रहोगी राक्षसों से असुरों से। लेकिन रावण ने बड़ी चालाकी की, क्या दिखाते हैं कि वो साधु का रूप लेकर धारण करके सीता के पास आया भिक्षा लेने के लिए। सीता बिचारी अनजान, और उसने क्या किया, उस रेखा को पार किया, तभी रावण उठा सका। अगर वो रेखा के अंदर होती तो रावण कभी भी उठा नहीं सकता था। तो लक्ष्मण रेखा मतलब मन का लक्ष्य, मन के लक्ष्य से आत्मा विचलित हो गई, आत्मा रूपी सीता विचलित हो गई, तो रावण उठा के ले गया, माना विकारों ने अपना आक्रमण कर दिया आत्मा पर। और जैसे द्वापर युग शुरू हुआ दुख शुरू हुआ। इसकी कहानी अनेक धर्मों में भी है, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में भी इस प्रकार की कुछ कहानी है कि एडम और ईव को बहिष्ट में भेजा, पैराडाइज में भेजा भगवान ने कि आप बहुत जितना सुख चाहिए लो, सृष्टि का, पैराडाइज का, स्वर्ग का खूब सुख लो, लेकिन उनको एक चीज के लिए मना किया। क्या मना किया? एक फल, कहा कि ये फल नहीं खाना, और फल खाओगे तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन बहुत सालों तक फल नहीं खाया तो बड़ा सुख से रहे, लेकिन एक दिन संकल्प आए, ये भगवान ने मना क्यों किया, तो वो फल को खाया, और जैसे ही खाया तो क्या हुआ है? उनको लगा कि अरे हमको तो वस्त्र ही नहीं है, मानो देह पर नजर गई। उसके पहले देह पर नजर नहीं गई, आत्मा पर ही नजर जाती थी, इसलिए कोई विकार नहीं था, और जब देह पर नजर गई तो काम वासना के वशीभूत हो गए, फॉरबिडन फ्रूट खा लिया दे अभिमान का। तो जब उस प्रकार से फल खा लिया जो भगवान ने मना किया था, तो उसके बाद भगवान का श्राप मिल गया। ये कहानी में आता है। अब श्राप का मतलब क्या है? आत्माएं जो स्वर्ग में थी सतयुग त्रेता में, वो सतो प्रधान दुनिया में थी, वो द्वापर युग आया, मानो अपने या अपने सत्यता से दूर चली गई, और काम क्रोध लोभ मोह विकारों में पड़ गई, फंस गई, और दुख अशांति शुरू हुआ। तो द्वापर युग से जैसे दुख अशांति शुरू हुई, तो भगवान की पुकार शुरू हुई, आराधना शुरू हुई, प्रार्थना शुरू हुई। ये सब जो भक्ति मार्ग है, ये द्वापर युग से शुरू हुआ। फिर मंदिर बनने लगे, तो जो देवी देवताएं हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों को जो पूज्य थे, जिनका तन और आत्मा दोनों ही पवित्र निर्विकारी थे, उनकी मूर्ति बना करके पूजने लगे। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बन गए। हम अपने ही पूज्य रूपों की पूजा करने लगे। लेकिन दुख जो बढ़ता गया, तो क्या हो, तो फिर इस संसार चक्र में परिवर्तन आया। अनेक धर्म पिताएं इस सृष्टि मंच पर आए, अपने अपने समय अनुसार आए। सबसे पहले अब्राहम आया। अब्राहम ने आकर के जुदाइज्म, ये धर्म स्थापन किया, क्योंकि भक्ति मार्ग बहुत बढ़ गया, मूर्ति पूजन बहुत हो गया, तो उसने आकर के कहा कि भगवान एक है, उसको याद करो, उसको पहचानो, उसी का ही ध्यान करो। फिर उसके बाद देखा कि संसार के अंदर प्रेम खत्म होता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है, हिंसा बढ़ती जा रही है, तो महात्मा बुद्ध आए, महावीर आए, ये उस समय के आए। ये सब द्वापर युग से शुरू हुआ। 2500 साल के अंतर्गत ये अलग अलग धर्म आए। उसके पहले का जो 2500 साल है, वो इतिहास प्राय लोप है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन 2500 साल के अंदर का जो इतिहास है, वो सबको मालूम है कि धर्म पिताएं आए। तो महात्मा बुद्ध ने भाईचारे का प्रचार किया, प्रेम का प्रचार किया, अहिंसा का प्रचार किया, लेकिन उस समय लोगों ने इतना समझा नहीं। फिर क्राइस्ट आए, ये दुनिया को थमाने के लिए आए, ताकि दुनिया में कुछ सहारा मिले, नहीं तो ज्ञान सब लुप्त हो रहा था, केवल केवल आडंबर ही दुनिया में आ रहा था, भगवान को तो सत्य रूप में कोई पहचानते ही नहीं थे। तो शुरू में जो शिव की पूजा होती थी, जिस शिव ने हमें इतना ऊंचा बनाया, उसकी पूजा करते थे, फिर देवी देवताओं की पूजा करने लगे, फिर धर्म पिताएं आए, और धीरे धीरे ये संसार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। आत्माएं परम धाम से नीचे और उतरती गई, उतरती गई। ये संसार का जो ड्रामा है, उसमें एक्टर्स बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। सतयुग के आदि में तो जनसंख्या केवल 9 लाख थी, सारी सृष्टि पर केवल 9 लाख, तो कोई बहुत करोड़ों साल पहले की बात नहीं है। आज भी गिनती में तो है कि 600 करोड़ या 650 करोड़ दुनिया की आबादी, लेकिन 5000 साल पहले केवल 9 लाख ही दुनिया की आबादी थी, तो कितना सुख होगा, और प्रकृति कितनी सतो प्रधान थी, सब कुछ भंडारे भरपूर थे। आज से 200 साल 500 साल पहले भी भारत की स्थिति बहुत ऊंची थी, तभी तो ये अनेक अनेक लोग, अनेक देशों के लोगों ने आकर के भारत पर आक्रमण किया। भारत देश ने किसी पर भी आक्रमण नहीं किया, पर भारत पर अनेक राज्यों ने आकर के आक्रमण किया। भारत का सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा, सारे हीरे जवाहरात लेकर के गए, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब भारत में बनते गए, धर्म बढ़ते गए, पर भारत धरती माँ, माँ के रूप में भारत ने सबको पनाह दी, सबको सहारा दिया, सबको सहयोग दिया। और हम देख रहे हैं कि जितने धर्मों की वृद्धि होती गई, हर धर्म में पहले सतो अवस्था थी, फिर रजो अवस्था हो गई, और आज सभी धर्मों में तमो अवस्था हो गई है, धर्म अधर्म के रूप में बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार किया, आज देखो आपस में लड़ते ही रहते हैं। जिस जीसस क्राइस्ट ने प्रेम का प्रचार किया, और आपस में आज देखो लड़ते ही रहते हैं। कहाँ गया वो प्रेम, कहाँ गई वो अहिंसा, कहाँ गया वो भाईचारा, सब गुण खत्म होते जा रहे हैं और घोर कलयुग में आकर के पहुंचे हैं। घोर कलयुग की निशानी क्या है वो भी हम सब देख रहे हैं। महाभारत में इसका वर्णन आता है, धर्म के नाम पर अधर्म हिंसा वो हम देख रहे हैं। धर्म तो अहिंसा सिखाता है, प्यार प्रेम सिखाता है, ईश्वर का नाम लेना सिखाता है। आज ईश्वर के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, या एक दो को लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं, अब ये थोड़ी भगवान सिखाता है। तो धर्म अधर्म का रूप ले चुका है। विज्ञान जो सुख देना चाहिए, वो विज्ञान आज अभिशाप बन करके दुख देने लिए ही सब हथियार बनाता जा रहा है। विवेक शून्य आनंद, आनंद का अर्थ कितना ऊंचा है। आनंद हम किसको कहते हैं? आत्मा के लिए कहेंगे आनंद, सत चित आनंद स्वरूप है आत्मा। आत्मा के लिए कहेंगे, कई जैसे संत महात्माओं को नाम देते हैं, सत्यानंद, प्रेमानंद, धर्मानंद, विवेकानंद, आनंद शब्द उनके लिए। लेकिन आज का जो आनंद है वो विवेक शून्य आनंद है, जिसमें विवेक खत्म हो गया है, केवल इंद्रियों का अल्पकाल के सुख का ही आनंद समझ लेते हैं। तो ये भी विवेक को खत्म कर रहे हैं उस अलग काल के आनंद के नाम पर। विवेक भी भ्रष्ट होता जा रहा है। इसी प्रकार चारों ओर जो आज अधर्म छा गया है, इसका नाश होना बहुत जरूरी है। अति का अंत आएगा, और सबसे बड़ा अति का जो स्वरूप आज संसार में फैल रहा है वो है क्या कहेंगे, आतंकवाद। आतंकवाद, इससे पाप का घड़ा इतना बढ़ रहा है जो बात मत पूछो। जो आतंकवादी होता है उसमें भी ह्यूमन बॉम्ब बन गया, ह्यूमन मनुष्य ही बम का रूप बन जाए, तो अब उसको तो संभालना बड़ा मुश्किल है। तो कहां भारत कितना ऊंचा था, और आज इस भारत की क्या स्थिति है। लेकिन शिव परमात्मा कहते हैं, हे मेरे बच्चे, अब मैं तुमको फिर से ये ज्ञान और राजयोग सिखाकर फिर से सतयुगी दुनिया में तुम्हें ले जाऊंगा, और ये भारत भूमि फिर से सतयुग बनेगी। कई हमसे पूछते हैं कि बहन जी भारत का भविष्य क्या है, हम कहते हैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, ये शिव बाबा ने बताया है। फिर वही देवी संस्कृति वापस आएगी, वो देवताएं सब कहां चले गए, वापस नहीं चले गए, बीच से कोई भी वापस नहीं जाता इस संसार चक्र से, सबको यहीं रहना है। वो देवताएं सब कहां चले गए, हम कहते इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं। आप सभी हो, वो सब देवताएं हो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए। अगर मैं किसी का नाम पूछूं तो कई कहेंगी मेरा नाम तो लक्ष्मी है, भाई कहेगा मेरा नाम तो नारायण है। आजकल तो चलो लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में दोनों अलग अलग थे, लेकिन कलयुगी दुनिया में एक ही व्यक्ति का नाम लक्ष्मी नारायण होता है, एक ही व्यक्ति का। वहां तो लक्ष्मी अलग होगी, नारायण अलग होगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था शिव राम कृष्ण भाई, शिव भी तो राम भी तो कृष्ण भी, तीनों नाम उस पर थे। तो लोग कहे कि तीन नाम कैसे पुकारे, शिव राम कृष्ण, तो कोई उसको हे शिव, वो कहता था नहीं तीनों पुकारो तब मैं आऊंगा। दूसरा कहे राम, तीसरा कहे कृष्ण, कोई कहे शिवराम भाई, कोई कहे राम कृष्ण भाई, तो भी कहता था नहीं तीनों नाम मेरा पुकारो तब मैं मानूंगा, तब मैं आऊंगा, तुमको जवाब दूंगा, तीनों नाम बोलो, मेरा पूरा नाम बोलो, खाली शिव या राम या कृष्ण नहीं बोलो। तो मेरे सामने भी उसको लाया गया, तो मुझे भी कहा गया बहन जी आप इनका ऐसे नहीं केवल शिव बोलना, राम बोलना, कृष्ण बोलना, तीनों नाम बोलना, शिव राम कृष्ण भाई। तो मैंने कहा शिव राम कृष्ण भाई आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, शिव का भी आप पर हाँ वरदान है, राम भी कृष्ण का, तो जरूर आपके अंदर तीनों के गुण होंगे, शिव के भी गुण होंगे, राम के भी गुण होंगे, तो कृष्ण के भी गुण होंगे। तो कहता बहन जी शर्मिंदा मत कीजिए, तो माँ बाप ने रख दिया माँ बाप ने रख दिया, गुण कहाँ है उन जैसे हमारे में। चलो गुण न सही, पर एक बात तो सिद्ध हुई कि वो हमारे पूर्वज थे, उनका ही तो नाम रखेंगे ना, पूर्वजों का ही तो नाम रखते हैं ना। साउथ इंडिया में जाएं तो पिता का नाम, गांव का नाम वो पहले आएगा, फिर उसका नाम लास्ट में आएगा, ऐसे होता है। तो ये हम वो देवी देवताएं कहाँ चले गए, सब साधारण बन गए, पूज्य से पुजारी बन गए। तो अब शिव बाबा कहते हैं फिर से तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ देवता बनना है, तुम ही थे वो, कोई और नहीं थे। और वो सब आत्माएं अलग अलग धर्मों में भी कन्वर्ट हो गई है, क्या क्या हो गई है, और सत्यता की खोज में है। तो शिव परमात्मा आकर उन आत्माओं को फिर से वापस ले रहे हैं। वो जो धर्म पिताएं आए, उन धर्म पिताओं ने तो केवल धर्म की स्थापना की, क्राइस्ट आया 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म बनाया, मोहम्मद आया तो मुसलमान धर्म की वृद्धि हुई, बुद्ध आया तो बुद्धिज्म फैला। लेकिन जब भगवान आते हैं तो कौन सा धर्म की स्थापना करते हैं, जो धर्म आज प्राय लोप हो गया है, जिनके केवल चित्र खड़े हैं, वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भारत की संस्कृति है, वो संस्कृति या देवी देवताओं का धर्म आज नहीं रहा, केवल चित्र है तो लोप हो गया है। वो धर्म की स्थापना करने भगवान आए हैं, और इसलिए कहते हैं कि अपने अंदर वो देवी गुणों को भरो और फिर से तुम्हें ऐसा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, ये आत्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। तो धर्म की भी स्थापना हो रही है, जिसको कहेंगे सत्य धर्म, सनातन धर्म, दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। और दूसरा एक परिवार बन रहा है। सत्ययुगी दुनिया में एक परिवार था, लक्ष्मी नारायण मात पिता के रूप में थे और उनका इतना मान था, जैसे आज तक भी कलयुगी दुनिया में जो नाम के राजाएं थे उनको कितना मान मिलता था, मात पिता के रूप में उनको मानते थे, आज तक भी था ना। नेपाल में तो राजा रानी का फोटो हर घर घर में होना चाहिए था पहले, क्योंकि ये मात पिता के रूप में, केवल राजा रानी नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण के सब वंशज है, ये सब उनकी वंशावली है, और जितने भी ये राजाएं थे वो सब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। तो सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण विष्णु का साकार रूप है, जो आज तक भी इन राजाओं को विष्णु का अवतार के रूप में पूजा जाता था। आज तक भी जो भी राजाएं महाराजाएं थे, नेपाल में भी तो ऐसा ही था ना, नेपाली भाई बहने बताएं कि उनको क्या मानते थे, विष्णु का अवतार, और देखो आज उनकी क्या स्थिति हो गई है। तो ये सब चीज सतो से रजो, रजो से तमो स्थिति आई, वो देवी देवताएं आज इतने आसुरी लक्षणों से भरपूर हो गए। तो फिर से देवता बनना है, फिर से वसुधैव कुटुंबकम बनना है, एक परम पिता परमात्मा की संतान, हम सब भाई भाई, तो सब हदों को समाप्त करना है, धर्म भाषा रंग जाति प्रांत, ये जितने भी भेद हैं संसार में ये मनुष्यों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं, अब इनको खत्म करना है। ये कैसे खत्म होंगे, आत्मा के ज्ञान से। आत्मा की दृष्टि से और परमात्मा के ज्ञान से, क्योंकि यह एक ही ईश्वर का परिवार है। भले हम भारत में कहते हैं भारत धर्म निरपेक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो धर्म निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि धर्म को नहीं मानते, पर यह है कि सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है, क्योंकि सभी धर्मों का पिता एक है। चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, उसका पिता एक ही है, वो निराकार ज्योति स्वरूप, और हम सब उनके बच्चे आपस में भाई भाई हैं। सभी भाई भाई हो ना, तो भाई भाई कभी लड़ते नहीं। कलयुगी दुनिया में तो भाई भाई एक दो का खून भी करते हैं, भाई भाई एक दो का खून करते, लेकिन सच्चे भाई भाई माना आत्मिक दृष्टि रखने वाले, सब हदों को पार करने वाले। तो परमात्मा अब एक सुंदर ईश्वरीय परिवार फिर से बना रहे हैं, सब हदों को खत्म कर रहे हैं। तो सब धर्म की स्थापना हो रही है, एक परिवार की स्थापना हो रही है, साथ साथ एक दैवी राज्य फिर से आ रहा है। वो सतयुगी देवताएं फिर से सृष्टि पर आकर के सारा भारत वो राजस्थान बन जाएगा। ये एक बहुत सुंदर संसार फिर से आना है। तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एकता फिर से हमें भारत में लानी है, तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। फिर से दूध घी की नदियां बहेगी भारत में। लेकिन शिव परमात्मा ने ये भी कहा है, क्या कहा होगा, कि दूध घी की नदियां बहने से पहले खून की नदियां भी बहेगी, ये भी बहेगी। कलप पहले भी बही थी, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार जो कराए, आज आपको सुनाया ना कि सिविल वॉर, न्यूक्लियर वॉर, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब जो उस समय हुआ ये रिहर्सल था, अब प्रैक्टिकल में फाइनल तो आना है। परंतु उसमें एक कल्याण समाया हुआ है। क्या कल्याण समाया हुआ है, जो पाप का घड़ा इतना भर चुका है वो फूटेगा, रक्त की नदियां जो बहेगी उससे पाप खत्म होगा, धरती जो इतनी बंजर बन गई है, उपज इतनी नहीं हो रही है, खेती इतनी नहीं हो पा रही है, ये सब फिर से हरी भरी हो जाएगी जब उनको बलि मिलेगी। वो बलि की बात नहीं, लेकिन ये पाप खत्म हो जाएगा संसार से, मानो खून की जो नदियां बहेगी उससे धरती को शक्ति मिलेगी और पाप नाश होगा, फिर से सदाचार श्रेष्ठाचार इस भारत भूमि पर आएगा, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा, फिर देवी देवताएं वास करेंगे। तो संसार खत्म नहीं होगा, वो तो अनादि अविनाशी है। और कलप पहले 5000 साल पहले भी कहते महाभारत लड़ाई लगी थी, वो कौन सी लड़ाई थी, कोई एक कुरुक्षेत्र के मैदान की बात नहीं है, लेकिन ये सारा संसारी कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। कौरव और पांडव दिखाते, पांडव पति परमात्मा, उनकी बुद्धि पांडवों की प्रीत बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई थी और कौरवों की विपरीत बुद्धि थी, तो जिनकी विपरीत बुद्धि थी उनका विनाश हुआ और जिनकी प्रीत बुद्धि थी उनका उनकी विजय हुई। तो आप सब किस सेना में भर्ती होने चाहेंगे, पांडवों की या कौरवों की सेना में? तो सभी पांडव हैं आप सभी, जो यहाँ का हेडक्वार्टर का नाम है पांडव भवन। कई पूछते पांडव भवन क्यों नाम दिया है, उनकी विजय होगी और वो भी सतयुगी दुनिया के मालिक बनेंगे और आप और हम फिर से उस सतयुगी दुनिया में फिर देवी देवता बन करके संसार में आएंगे। हाँ, तैयार हो ना, तैयार हो सभी, सभी तैयार हो, जो तैयार है वो हाथ ऊपर करे। हाँ, सभी तैयार हो, पर उसके लिए कुछ शर्त है आपके सामने, शर्त है, कुछ तो देके जाना पड़ेगा। शिव बाबा कहते हैं 5 खोटे पैसे देके जाओ तभी तो बनेंगे ना। मंदिर में जाते हैं, तीर्थों पर जाते, कुछ दान करते हैं ना, तो आप क्या दान करेंगे, क्या दान करेंगे, खोटे सिक्के, ये विकार खोटे सिक्के हैं लेकिन बड़े मोटे हैं, खोटे हैं पर मोटे हैं। ये भगवान को देके जाओ, ये आत्मा की चीज नहीं है, मैं आत्मा तो अति शुद्ध और पवित्र हूँ, ये निश्चय करके जाओ तो आत्मा सचमुच इन विकारों से न्यारी शुद्ध पवित्र होकर भगवान को अर्पित हो जाऊं, ये कितनी बड़ी कितने बड़े भाग्य की बात है। तो भगवान इतना ऊंचा भाग्य हमें देगा जो मानव देव बन जाएगा। यही आप सबके प्रति भी हमारी शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।